نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج کا ہمارا یہ لیکچر کیا ہے, یوتھ از دا مسلم فیوچر. اور میں نے شروع میں یہ بات پتہ کر لی ہے کہ آپ سب جوان ہیں. حقیقت یہ کہ جوان وہ ہے جس کے حوصلے جوان ہیں, جس کی زندگی میں کوئی عزم ہے. اگر عمر کی بات کریں تو عمر کے اعتبار سے 15 سے 22 15 to 22 years کی عمر کو نوجوانی کی عمر کہتے ہیں, یوتھ کی. اور ہمارا آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ پاکستان ٹرپ 2022 اور 23 اب آگے پی کے 22-23 جو ٹرپ ہے اسی کا ایک لیکچر ہے. اور اس میں ہم لوگ قرآن کا مطلوب انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آج میں خاص طور پہ آپ سب کے ساتھ ادھر اس موقع پہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی ہوں. آج جو بات کروں گی وہ یوتھ کی کروں گی. آپ خود بھی جوان ہیں الحمدللہ, لیکن ہم سب کے گھروں میں جوان بچے ہیں. یا تو آج کا لیکچر آپ کے لیے ہے اگر آپ خود 30 سے نیچے ہیں, یا پھر آپ کی بیٹیوں اور بہوؤں کے لیے. حقیقت یہ کہ جو بہترین عمر ہے نا وہ جوانی کی ہے. انبیاء کرام میں سے جن کو نبوت ملی جوانی میں ملی, اور آپ پتہ 40 سال کی عمر تک کو بھی شاب کہتے ہیں. اور درد جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کرام کا شیوہ تھا, طریقہ, میتھڈالوجی, ہیبٹ. ہر نبی کو نبوت جوانی میں ملی. ہم اکثر سوچتے ہیں, میں سوچتی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 25 سال کی عمر میں شادی جو ہو گئی تو نبوت کیوں نہیں ملی. حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی نا, تو نبوت کیوں نہیں ملی. پھر 15 سال اور گزرے, پھر 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, لیکن وجہ اس کی کیا تھی سوچیے ذرا. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ 40 کے بعد آتا ہے, اور یہ بھی اس کو آتا ہے جس کی پہلے تمہید بند چکی ہو, جس کے دل میں, جس کے دماغ میں ماں باپ کی باتیں ہوں. ہم جیسے لوگ, یعنی میں آج بڑی درد لے کر آئی تھی اس بات کا کہ ہماری یوتھ کدھر ہے, ہمارے ینگ بچوں کو ہم نے کن مصیبتوں یا کن مشکلات میں ڈال کر ان کی زندگی کا مقصد ہم لوگوں نے کیا کر دیا کہ صرف تم نے دنیا دنیا اور دنیا کے مسائل حل کرنے, اور جو ہمارے امت مسلمہ کے مسائل ہیں اس کے اوپر ہماری نظر کم ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آج سب سے پہلی بات, میں سٹیپس میں بات کروں گی, اور سب سے پہلی بات تو میں کروں گی آج کے دور کی یوتھ, عصر حاضر اور نوجوان. ہمارے آج کے دور کے بچے, ان کے اوپر کیا مسئلے ہیں, کیا پریشانی ہے, کیونکہ بات تو آج کی کرنی ہے نا. میں پچھلی باتیں چھیڑ دوں اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو آج دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگ سامنے رکھتے ہیں تو وہ فگر اینڈ فیکٹس دیتے ہیں. اسی میں ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں, جو پوری دنیا کی صحت کی فکر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر 22 سال کی عمر کے بچے یا بچی کو نوجوان کہتے ہیں. نوجوان سمجھتے ہیں, جوان ہونے میں ابھی نیا نیا ہے. اور جوان ہونا جو ہوتا ہے نا یہ 40s تک رہتا ہے. 40 تک انسان کی صلاحیتیں اور اس کی خوبیاں جو ہے نا وہ باقی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اور بچپن سے لے کر لڑکپن کا دور یہ اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو پھر جوانی آتی ہے. آج کے مسلمان بچے جو آج ہمارے گھروں میں ہیں اور کالجز میں ہیں اور یونیورسٹیز میں ہیں اور جدھر بھی ہیں آپ کے گھروں میں ہیں, کیا آپ اپنے بچوں کو ان کی عمر کے تقاضوں کے مطابق پال رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کے مسائل آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اس دور میں امت مسلمہ کا ایک فعال رکن, ایک بڑا ہی ایکٹیو پرسن سمجھ کر پال رہے ہیں؟ نہیں. اور اسی آرگنائزیشن کی رپورٹ کیا ہے کہ دنیا میں نوجوانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے کہ بوڑھے لوگ جائیں گے تو پھر چھوٹی عمر کے بچے نئے سے نئے آگے آئیں گے. سوال یہ ہے کہ نوجوان کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہمارے گھر میں تو یہ سبزی نہیں لا سکتا میرا بیٹا. یعنی 15 سے 22 سال کا آپ کا بیٹا کیا وہ شملہ مرچیں خرید سکتا ہے تازی تازی؟ وہ جھریاں بنی ہوئی لے آئے گا. اگر کسی سٹور پہ جائے گا نا تو دکاندار شکر کرے گا کہ کوئی آیا سیدھا سادہ بندہ, تو اس کو بس ہی دے دو. آپ کی بیٹی جس کو آپ نے ابھی کچن کا منہ نہیں دکھایا, کیا وہ 5 دالوں کے نام جانتی ہے؟ یہاں تو جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہاں والوں کا شکل ہی میں نے دیکھا کھانا ہے, لیکن اکثر ینگ بچیوں کو دالوں کے نام نہیں آتے. पीली काली दाल करती हैं। याद रखिए कि नौजवानी की उम्र बड़ी अहम उम्र है। आप किसी बूढ़े को पूछिए, आपके घर में ससुर होंगे, दादा होंगे, किसी के बाप बहुत बूढ़े हैं, अगर आप अगर आखिरी बच्ची हैं या बच्ची बहन भाइयों में छोटी हैं, तो अब्बा आपके बूढ़े हो चुके होंगे। कभी उनसे पूछे कि अब्बा सुनाएं क्या दिल करता है, तो कहेंगे कि बेटी दिल करता है कि मुझे वो उम्र वापस मिल जाए। मैं घोड़े की तरह दौड़ता था, मैं चने चबा जाता था, अब टांगों में दर्द हैं, दांत टूटे हुए हैं। यानी ऐसा ऐसा हमारी सलाहियतें ख़त्म होती हैं ना, तो इंसान की कुव्वतें, ताकत, एनर्जी, उसकी सलाहियतें, मैं पॉइंट्स बोल देती हूँ, जवानी में हमारे पास क्या कसरत से होता है। नंबर एक कुव्वत, एनर्जी। बच्चों को देखा करें कितनी एनर्जी, उछल के बढ़ेंगे। आपको सर्दी लगती है, उनको कोई नहीं लगती। आपके बच्चे जो 10-12 साल के, वो बाहर हो सकता है गुल्ली डंडा खेल रहे हो सर्दियों में, उनको कुछ नहीं होता। सलाहियतें बहुत होती हैं, स्किल्स। आप औरतों पे बात कर लूँ, पकाने की, खिलाने की, सफाई भी कर लेती हैं, कपड़े भी धो लेती हैं, मेहमानों को भी देख लिया, जाके घर के बुजुर्गों को भी सर में डाल के तेल कंघी कर दी, है ना। आप में से जो इस वक्त 40+ या 50+ सिस्टर्स हैं, वो ज़रा सा पीछे झांके अपनी ज़िंदगी के पिछले 20 साल, क्या अफसोस नहीं होता। मेरी अपनी वालदा, अब अक्सर मैं उनके मुँह से एक जुमला सुनती हूँ, अल्लाह कदी मैनू पहले मंगर कर दे, मैं दौड़ दौड़ के तेरे नाल जानी सी, मैं तेरे नाल दरसा जाती, ये कर दी। वो ऐसी बातें करती हैं, कभी मैंने अल्लाह उन जी कर देना मेरी फलां। हालांकि कोई तकलीफ नहीं है अल्लाह की रहमत से, बड़ी उम्र के जो छोटे मोटे मसले होते हैं वो तो होते ही हैं। बीमारी कोई नहीं है जिसको अल्लाह ना करे के वो बीमारी के जिसको जान लेवा, लेकिन ये जहन में होता है। इंसान जिसने भाग दौड़ के ज़िंदगी गुजारी होती है ना, उसको ये अपनी एक किस्म की रूहानी मौत लगती है। आप में से जो यंग सिस्टर्स हैं ना, 20, 30, 35 की, जिनकी सासें भी उनके साथ घर में रहती हैं और आप किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हैं, आप ज़रूर अपनी सांस को ऑब्जर्व करिएगा। ये जो अम्मा जी का या अम्मी जी का मूड ख़राब हो जाता है ना बात बात पे, चिड़ी चिड़ी रहती हैं, बोलती रहती हैं, गुस्सा करती हैं और हर बात पर रोक टोक करती हैं, आप इन सारे उनके जुमलों में से ना पता क्या सोचा करें कि वो बर्फ़ हाथ से पिघल रही है। जवानी में बंदा खुद कर लेता है, जब उम्र बढ़ने लगती है ना, तो वो नज़र तो सब आ रहा होता है पर कर नहीं सकता, तो वो उनकी बदमिजाजी बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि जब आप उनकी उम्र पे आएंगी ना, तो पता नहीं आपका क्या हाल होना है। फिर दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर लो, इतना पलंदा दवाइयों का रख के वो खाती हैं, और वो बूढ़े कहते हैं खाना खाओ ना खाओ जी गोली खानी है। तो मिजाज में चिड़चिड़ापन क्यों आता है, क्योंकि वो जो अपने हाथ से तिनका तिनका जोड़ के घर बनाया होता है ना, अब वो बिगड़ता दिखता है। और सच्ची बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं खुद भी इस बात को कहूँगी, जिन्होंने घर बनाए होते हैं, जिन्होंने मेहनतें की होती हैं, जिन्होंने बुनियादों में जाकर कुदालें और कई डाली होती है ना, उनको ही दर्द होता है। हमारे बड़ों के जो मुहावरे थे ना, वो गलत नहीं थे, माले मुफ्त दिले बेरहम। 10 रुपये की एक किताब इधर रख दें और दूसरे तरफ फ्री रख दें, तो 10 वाली 10 ही जानी है और फ्री 200 चली जानी है, ऐसी है ना, मुफ्त, और वो उधर ही रुल रही होनी है। बाद में वो मस्जिद आलों ने वो 200 में से कोई 20-25 मस्जिद में उठा लेनी है, क्योंकि कदर नहीं होती। जिन्होंने मेहनत की होती है, ये हम लोग दिन रात देखते हैं, क्लासेस करते हैं ना, अल्लाह सुभाना ताला ने मौका दिया, साथी हैं, वो अपने स्कूल के नाम पर एक हर्फ नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्या कोई सिक्योरिटी मैन होगा, क्या कोई गार्ड मैन होगा, क्या कोई पुलिस होगी, क्यों? उन्होंने मेहनत करके इज्जत कमाई है। हमें बगैर मेहनत के कोई चीज़ मिल जाती है, हमें उसकी कदर ही नहीं होती। तो सांस ने घर बड़ी मेहनत से बनाया आपका, वो उसकी जवानी बुढ़ापे में ढल गई है, तो अगर अम्मा जी को गुस्सा आता है, तो जवान बहनें गुस्सा ना किया करें, कोशिश किया करें कि उनको खुश रख दें, उनके मुताबिक करें। कुछ फिर 20-30 साल में फ़र्क पड़ गया, आदतों का फ़र्क, लाइफ स्टाइल का फ़र्क। जब आपकी सास जवान थी या वो बहू बनकर आई थी, उनकी ज़िंदगी में कुछ ABCDC सोशल मीडिया था ना, अम्मा जी को कोई इंटरनेट से शॉपिंग करनी थी ना, उनको कोई नारकली से जाकर कोई कपड़े खरीदने थे, घर बैठे उनकी चीज़ें आती थी, और उनका बस एक ही काम था, मियाँ खुश रखना है, बड़िया की खिदमत करनी, तो बच्चों बाल, यही होता था ना। वो बड़ी फोकस थी मियाँ। आप जो जनरेशन इस वक्त माएँ हैं या बहू हैं ना, मुझे लगता है अब आप से पहले वाला दौर गुजर गया, अब वो नहीं आना वापस। और फिक्र कीजिए उस दौर की जब आपकी बहू आनी है। इस वक्त आप जितना अपनी सासों ससुर अपने घर बार को देख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहू ने इतना नहीं देखना आपको। बी रियलिस्टिक, हकीकत पसंद बने, कर क्या सकते हैं, अपनी बेटियों को अभी से ट्रेन करें। देखिए बातें तो मैं जितनी मर्जी कर दूं अच्छी से अच्छी, लेकिन इस वक्त आपके हाथ में दो नस्लें हैं, क्योंकि मुझे अक्सरियत माशाल्लाह 30-40 से ऊपर की भी दिख रही है, सभी तरह के लोग हैं आप। मैं दोनों तीनों को हर एक को मिला रही हूँ। अगर आप खुद यंग हैं तो अपनी जवानी को इस्तेमाल करें, ये वक्त फिर नहीं आना। कहते लख खुराकां खा लो, जवानी फिर नहीं आनी। जितनी मर्जी आप खुराक खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, पिनियाँ खाएं, अलसी खाएं, पांडा खाएं और गाजरों के हलवे खाएं, देखें कितनी चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है। वक्त ही चला जाएगा, आज के दिन को कैद कर लें, इस वक्त को अपनी डायरी में लिख लें, आज का दिन मेरा वो दिन है जिस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं अपनी जिंदगी के बेहतरीन दौर से गुजर रही हूँ। चलना चाहें तो चल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भागना चाहें तो भाग सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बैठना चाहें नीचे बैठे हैं बैठ रहे हैं। कुछ सालों बाद आपने नीचे कोई नहीं बैठना, आप कुर्सियों वालों को कहो ना अम्मा जी नीचे आ जाओ, मैं कहते हैं बैठे नहीं जाता, खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, कुछ सालों बाद नहीं पढ़ी जानी, सजदा जमीन पे करते हैं, रज रज के कर लें, फिर नहीं होने। आने वाला वक्त आपके लिए कमजोरियों का, बीमारियों का, तकलीफों का, अल्लाह आप सबको बचाए, आप सबको सेहत दे। मैं जितनी मर्जी दुआएं कर दूं सारी नहीं कबूल होनी, वरना तो फिर कोई बीमारी ना हो। तो अपनी इस जिंदगी को बेहतरीन रखिए, अल्लाह ने आपको कुव्वत दी, सलाहियत दी, हौसले होते हैं, तीसरी चीज हौसला बड़ा होता है जवानी में, कर लेंगे जी। अब बूढ़ी सास को फिक्र पड़ गई, अब्बा जी ने जाके दावत कह दी राती 25 बंदियां दी, ते अब्बा जी नाल अम्मा जी कौड़े हो रहे, गुस्से च की तन लोड़ सी बुलान दी, तुहानू पता गैस भी नहीं आती, ते तुहानू भी पता है कि कुड़ी दे इन्ने छोटे छोटे बच्चे है, वह भी बीमार है, तो तुम 20 बंदियां दी रोटी कहती। तो वो जो अम्मा जी है ना, वो अपनी कमजोरियों से बोल रही हैं। तो आप बहू हैं, आपको अगर वाकई आप बड़ी माशाल्लाह खुश हैं तो आप कहेंगे अम्मा जी फिक्र दी गल ही कोई नहीं, मैं हलीम दा पतीला चढ़ा देना तो रोटियां बाजारों ले लेंगे, तो नाल अल्लाह चाहे असी गुड़ वाले चावल बना लेंगे, रोटी हो गई। हौसला होता है, वी कैन डू समथिंग, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी गल नहीं। ये इतनी बड़ी बात है, मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से कह सकती हूँ, आपके इस पूरे कैरियर में ऐसे ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि आप भी लरस जाते हैं। सारे कहते हैं ना ही करो, चलो हले ठहर जाओ, अभी देख लेते हैं, अभी वक्त, अभी ये, अभी वो, अभी वो, कोई एक बंदा खड़ा होकर कहता नहीं हो जाना है, आप करें शुरू, हम आपके साथ हैं। मेरे पास इसकी दास्तानों की दास्तानें हैं, अमेरिका से मूव होकर नॉर्वे या यूके में आना या यूरोप में आना, ये इतना बड़ा फासला था कि जैसे बैक गाड़ी चलाएं आप, बैक ट्रैक, जिधर पता ही नहीं कि किधर जाके गाड़ी रुकनी है। लेकिन एक साथी थी, उनके कहने पे फिर इरादा बदले कि चलो फिर जो होगा देखी जाएगी। तो ये हौसला जवानी में होता है, हो जाएगा जी, कर लेंगे जी, कुछ नहीं होता, हौसला बहुत होता है। फिर चौथी चीज़ जो जवानी में बहुत होती है ना, वो उमंगें, अर्ज में बड़ी हैं। हर वक्त माओं से बेटियों का क्या रोना होता है, अम्मी वो जोड़ा ले दें, अम्मी वो चूड़ियाँ ले दें। बाजार अगर ले ही जाएं बेटियों को माएँ, तो वो हर दुकान पर क्यों खड़ी होती हैं, और आपको ज़रा नहीं दिल कर रहा कुछ लेने को, लेकिन उनकी अभी उमंगे हैं, आपके अभी अब मर गए आपके शौक, या आपने पूरे कर लिए हैं या आपने मार दिए हैं। बच्चियों में शौक होते हैं, छोटी छोटी चीज़ में होते हैं, आपका मुझे नहीं पता सच्ची बात है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक तो बच्चियाँ डिपेंडेंट ही है ना, उमंगे बहुत होती हैं। फिर आप देखिए कि अगली चीज़ जो जवानी में होती है ना, वो जफाकशी, मेहंदी, और ये नेचुरल नॉर्मल माहौल में पलने वाले जवानों की बात करती हूँ। फिर एक और चीज़, बुलंद परवाजी, अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ लें आपको इस जुमले का समझ आ जाएगी, चरखे नीली फाम, वो कहते हैं कि आसमान हमारी बुलंदियाँ, हमारी मंजिल आसमानों तक है। यानी इंसान बहुत सोचता है, फिर अजम बहुत होता है, इरादा कर लिया डट गए, मामे की कुड़ी नाली ब्याह करना, करना ही फिर होते ही, सारा खानदान पीछे हो जाए, जो भी ये मामा भी ना माने, वो कहते करना ही इधर है। जब हमने बूढ़े होना है ना, तो हमारी ये चीज़ें खत्म होंगी। तो ये जो मैंने आखिरी जुमले बोले, अगर मैं इनको एक जुमले में डाल दूं, तो कुव्वतों, सलाहियतों, हौसलों, उमंगों, जफाकशी, बुलंद परवाजी और अजायम का दूसरा नाम नौजवानी है। इतनी एनर्जी है आपकी इस जवानी की उम्र में, और आप साथ ही साथ जो बच्चियां बैठी हैं ना, वो भी जरा सोचें कि हैं ये सब कुछ हमारे अंदर, मरियल मोई मारी टेली टाली जवानियां तो नहीं आज हमारी। जितना बड़ा मकसद देंगे, जितना बड़ा अपने जवानों को काम देंगे, उतनी ये चीज़ें बढ़ेंगी। और आज अगर नहीं है तो फिर इस पर हम आगे बात करेंगे। किसी भी मुल्क या कौम की कामयाबी या नाकामी आप अपने ऊपर लीजिए। आप कौन सी कौम है? आप एक मुसलमान कौम है। मुल्क कौन सा आपका? बोले ना, पाकिस्तान। आप पाकिस्तान और मुसलमानों को कामयाब देखना चाहते हैं कि नाकाम, फतह देखना चाहते हैं कि शिकस्त, तरक्की देखना चाहते हैं कि तनजली, उरूज देखना चाहते हैं कि जवाल। तो फिर लिख लीजिए, इन सारी चीजों में नौजवानों का अहम किरदार होता है। आप तारीख के सफ़े पलटें, हर इनकलाब, चाहे वो सियासत के मैदान में आए, सियासी इनकलाब हो, इक्तसादी यानी मुआशी जिसको कहते हैं इकोनॉमिकल, माशरती हो, मुल्की सतह का हो या इंटरनेशनल हो, साइंस का मैदान हो या आज के दौर में सोशल मीडिया का, हर मैदान में नौजवानों का किरदार बहुत अहम रहा। आप कह सकते हैं कि की रोल, इंग्लिश में कह दो ना, की रोल होता है। हमने अपनी बिल्कुल बस शऊर की उम्र शुरू हुई होगी, मेरा ख्याल है उस उम्र में रूस का इनकलाब सुना था। रशिया में कितना बड़ा इनकलाब आया, एक वक्त पे वो सुपर पावर थी, फिर वो अफगानिस्तान में आया, फिर वो टुकड़े टुकड़े हुआ। फ्रांस के इनकलाब का नाम सुना होगा, अरबों के दौर कितने गुजरे, आपने मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा, ये सारे नाम है ना। इन सब के इनकलाबों को जरा सा जाकर स्टडी कीजिए, हर लीडर के पीछे जो फोर्स होती है ना, वो यूथ फोर्स होती है। तारीख से साबित है, हर छोटी बड़ी तब्दीली नौजवानों के जरिए आई। तो फिर लिखिए, आज मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो आज की कर रही हूँ। आज के दौर में भी हर छोटी बड़ी तंजीम या तहरीक, चाहे आपके पाकिस्तान में कोई सियासी जमात हो, मजहबी हो, सोशल हो, फौज हो, आप देखेंगे कि सब जगह नौजवान आगे आ गए हैं। इंशाल्लाह इन्हीं नौजवानों को सामने रखकर हम इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं, हम पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकते हैं, हम अपने शहर का नाम बुलंद कर सकते हैं। जिस दिन हमारे नौजवानों को यकीन आ गया कि वो क्या कर सकते हैं, उस दिन इस पाकिस्तान का नसीब बदल जाना है। ये बात लिख के रख लें और ये हो के रहेगा, और इस वक्त उसकी हवाएं चल रही हैं। अब नमाजों की सफ़ों में सफ़ेद दाढ़ियों से ज़्यादा काली दाढ़ियों वाले हैं माशाल्लाह। अल्लाह सब के बच्चों की हिफाजत करें। पाकिस्तान में बिल्कुल काम शुरू हो चुका है, तब्दीली का आगाज़ है। कैसे, वो मैं सियासी नारों की बात नहीं कर रही, हमारे जवान बच्चों के हाथों में कुरान आ रहा है, हमारी यूथ अब थक गई है गुनाह कर करके। दोनों तरफ चीजें हैं, एक तरफ बुराई भी रूज में, वो तो जहर शोर मचेगा। याद रखिए कि जब आप दूध उबालते हैं ना तो जोश आता है, तो फिर कुछ दूध बाहर गिर भी जाता है। इस वक्त अगर आप देखें तो दोनों तरफ काम बराबर का हो रहा है, गुनाहों वाले शैतान का गिरोह जिसको हिजबुल शैतान और हिजबुल्ला सूरत हशर में अल्लाह ने फरमाया ना, आप देखें दोनों तरफ काम हो रहा है। और आप जब कुरान खोलते हैं, आइए जरा चंद बातें, अब आपको अगला टॉपिक क्या देना चाहती हूँ, कि आपको ये सिर्फ मेरी बातें ना लगें कि ये बाजी पता नहीं क्या तसलियाँ दे रही है हमें। कुरान खोल लीजिए, कुरान जवानों के बारे में क्या कहता है, अब अगली बात इस पर करूँगी। आप देखिए कि कुरान में बहुत सारे प्यारे किस्से हैं, इंशाल्लाह हम कुरान की स्टोरीज किसी मौके पे अलग से भी सुनेंगे, लेकिन एक बड़ा ही मशहूर वाक्य है असहाबे कहफ का। कल जुम्मे के दिन सूरह कहफ किस किस ने पढ़ी थी, किस किस को समझ आई थी? बहुत थोड़ों को समझ आई थी। और अगर आपको समझ आ जाए सूरह कहफ कहती क्या, आपको तो जवान लोगों की सूरत है। पहला ही वाक्य है ना असहाबे कहफ का, ये नौजवानों का है। अल्लाह सुबहान तआला जवानों के इस किस्से में क्या बात करते हैं, फित्र, यानी अल्लाह सुबहान तआला ने जवानों की बात सूरत कहफ में पेश करके आपको मुझे क्या बता दिया, कि अगर वक्त के रिवाज, वक्त के फैशन और वक्त की रिवायात से टकराने वाले चंद नौजवान इकट्ठे हो जाएं, ऑर्गेनाइज हो जाएं, किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, तो उस मुआशरे से गुनाह को और नाफरमानियों को और शैतानी कामों को दुम दबा कर जाना पड़ता है। ये सच है, बस इस वक्त का अब इंतज़ार है हमें कि कब हमारी नस्लों को पूरा कुरान समझ आ जाएगा। और जिनको कुरान समझ आएगा ना, उन्होंने फिर अपने माँ बाप की रिवायतों पर नहीं चलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का काम शुरू किया था तो उस वक़्त क्या हुआ था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा था, आपके सामने जितने लोग दुश्मनी पे आए थे वो सब बूढ़े थे, आपसे बड़े थे, उन्हीं के बेटों को अल्लाह ने इस दीन के काम के लिए चुन लिया। आप देखिए कि अबू तालिब बाप है, तो बेटे अली रजी अल्लाह अन्हु, जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु जवान थे। अल्लाह के नबी सल्लम की जो असल कामयाबी थी ना, मुझे ऐसे लगता है आज इस वक्त इस लीडरशिप की ज़रूरत है, हमें ऐसे लीडर्स की अब ज़रूरत है जो हमारे जवानों को जगा दें, ہمارا جو دین ہے اس وقت پاکستان انڈیا کے اندر ظاہر ہے, ہم چاہے ناروے بھی پہنچ گئے نا تو ہم ہیں وہی دیسی, دین کے معاملے میں وہ ایک جاگیردارانہ دین ہے, باپ دادا کے طریقوں کا دین, بڑوں نے یہ کہا ہم یہ کہتے تھے, اگر زیادہ سے زیادہ کچھ کیا نا تو وہ پتہ کیا کیا, جھگڑے, اختلاف, فرقے بازی, مسلک بازی. لیکن جو جھوٹ ہوتی ہے نا ان کو بات سمجھ آ گئی تھی, اس دور میں بھی آئی تھی آج بھی آئی بھی ہے, گھر گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے. تو صحاب کہف کون تھے؟ اپنے دور کے وہ لوگ جنہوں نے وقت کے رواج سے پیچھے کیا اپنے آپ کو. اب میں تھوڑی سی بات کروں گی یوتھ سے جو آپ اس وقت سن رہے ہیں. آپ کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے, آپ کا کیریئر بہت اچھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے کیریئر کو بہترین طریقے سے سلامت رکھے, آپ کو دنیا کی بھی کامیابیاں دے اور آخرت کی بھی دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف اس دنیا کے لیے نہیں بنے. اور جو آپ میں سے مائیں بیٹھی ہیں جن کے جوان بچے بچی ہیں, میں ان سب سے بھی کہوں گی آپ کے بچے پودے نہیں ہیں کہ آپ نے ان کو پانی اس لیے دینا ہے کہ پھر وہ پھل دیں اور آپ پھل کھائیں. نہیں, آپ کے بچے وہ بچے ہیں کہ جن سے آپ نے انسانیت کو نفع دینا ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کی دنیا بدل گئی. اور آپ اکثر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں گی نا, آج سے آپ سب اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل کیجیے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے چن لیں. اور انسانوں کا سب سے بڑا فائدہ پتا کیا ہے؟ کہ ان کو آگ سے بچایا جائے. فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اپنے بچوں کو صرف روٹیاں کھلانی ہیں, پراٹھے کے ساتھ انڈا کھلانا ہے, ساگ اور ڈوڈے کھلانے ہیں, کھلائیں. آپ دیکھیے کہ کسی کا بڑا اچھا مجھے کال لگا تھا کہ ہمارے اسلاف کی مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تاکہ وہ اٹھیں, طاقت آئے, ہمت آئے, کام کریں. اور آج کی ماں بچے کو دودھ پلاتی کے سو جائے. اکثر گھروں میں آپ نہیں سنتی بچہ رین 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 کر رہا ہے, رو رہا ہے, تو ماں کہتی ہے لاؤ اس کو فیڈر دو, میں اس کو سلا کے آؤں. آج اس لیے امت سو گئی ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کے اندر وہ عزم, وہ حوصلہ, وہ امنگ, وہ چیز نہیں ڈالی. تو نوجوان کون ہے جس کے حوصلے بلند ہے, جو وقت کے غلط رواج کو دیکھ کر ٹکر لینے والا ہو؟ اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرائم لوکیشن پہ ڈسکس کیا ہے سورۃ کہف میں. پانچ واقعات ہیں جس میں تین بڑے ہیں اور دو چھوٹے ہیں, اور ان میں سے ٹاپ ون کیا ہے؟ اصحاب کہف. قرآن اور نوجوان دیکھیں, نحن نقص علیک نباہم بالحق, ہم آپ کے سامنے ان کی خبر حق کے ساتھ, حق یعنی سچی ہے, یہ کوئی جھوٹی فکشن باتیں نہیں ہیں. ان نو فطرتن, یہ چند نوجوان تھے. خوبی کیا تھی؟ دو لفظ ہیں, آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. آج میں آپ سب کے, اس شہر کے سارے جوانوں کو ایک پیغام دے کے جاؤں گی, آمنوا کا کام کر لیجئے. آمنوا بربہم آپ کر لیں. اللہ نے کہا ایک کام انہوں نے کیا, آمنوا بربہم, وہ ایمان لائے اپنے رب پر, تو باقی اگلا کام اللہ کرے گا. اور وہ کہ وزدناہم ہدا, ہدایت میں اللہ نے بڑھا دیا. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہم اپنے بچوں کے آمنو پہ ہی پورا کام نہیں کر پا رہے, ایمان نہیں. جس کو رب کا تعارف مل گیا وہ پھر کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہمیں ابھی اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ملی. وما قدر اللہ حق قدری, وہ رب کتنی بڑی ہستی ہے, وہ کتنی بڑی اس کی شان ہے, یہ نہیں. اپنے بچوں کے ساتھ اگر آپ کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دل میں ایمان کا بیج ڈالیں. آپ کی زندگی میں نہ بھی ہوا نا, چلیں ایمان کا بوٹا بن گئے, آپ کے بعد ایمان کا درخت بنیں گے انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام بڑی چھوٹی عمر میں ماں باپ سے جدا ہو گئے تھے, لیکن بیج ماں باپ نے ڈال دیا تھا آمنو کا, وزدناہم ہدا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا تھا. اور یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کیا تھا. اپنے بچوں کو بڑا بنائیں. آپ کے گھر میں جو بھی بچے ہیں نا, ان کی ایج, عمر جو بھی ہے نا, آپ اس میں ایٹ لیسٹ, میں وقت کی رفتار پہ نظر کرتے ہوئے کہتی ہوں, بچپن سے لے کے 10 سال کے بچے کی عمر میں آپ 5 سال کا اضافہ کر کے سوچیں. یعنی اگر آپ کا بچہ 10 سال کا ہے نا, تو آپ سوچیں کہ یہ 15 سال کا ہے. اگر آپ کا بچہ 8 سال کا ہے تو 5 اوپر ڈال کے اس کو 13 کا کریں. اور اگر آپ کا بچہ 10 سے لے کے 20 سال کی عمر کا ہے, یقین کریں بلا مبالغہ آپ ان کی عمر میں اب 10 سال ایڈ کر لیں. جب آپ 12 سال کی تھیں उस वक्त की दुनिया और आज आपकी 12 साल की बेटी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसके पहनने में, उसके ओढ़ने में, उसके देखने में, चलने में, खाने में, पीने में, दुनिया ने उनको इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि आप अगर अपनी 12 साल की बेटी को ट्रीट करते हुए, चलिए आप 10 नहीं करना चाहते ना, 5-6 साल उसकी ऐड करके इतना उसको बड़ा ला कर ट्रीट करें, तो वो कहेगी माई मॉम इज अंडरस्टैंडिंग मॉम, आई हैव अंडरस्टैंडिंग मॉम, मेरी अम्मी मेरे जज्बात समझती हैं। और अगर आप वो 12 साल की को 8 साल की बनाकर ट्रीट करेंगे ना, तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगी। ये एक अलग मौजू है, इस पर इंशाल्लाह अगले हफ्तों में हमने बात करनी है। मुल्तान से एक लेक्चर आएगा, आप लोग भी सुनिएगा ऑनलाइन, टॉक्सिक पेरेंटिंग, तरबियत की गलतियाँ, उसमें से एक गलती बता रही हूँ। हम अपने बच्चों की एज से छोटा या एज से बड़ा उनको समझने लगते हैं, दोनों ही गलती है। आप जिस जगह बैठे हैं ना, जिस हालात के होते हैं उसमें रहें। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों को अपने एज से बड़ा साबित करेंगे ना, उनके हौसले बड़े होंगे। और ये जो साहबे कहफ थे ना, इनके अजाइम, इनके हौसले गैर मुतजलजल थे। अल्लाह ने इनकी नमाजों का कोई तस्करा नहीं किया, ये रोज़े रखते थे, ये यामे 20 के रखते, कुछ नहीं कहा। ये तो ऑफकोर्स होगा, लेकिन अल्लाह ने इनके हौसले की बात की कि इन्होंने वक्त के दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात। देखिए ना, अल्लाह किसी को कोई स्टोरी सुनाएगा तो ऐसी तो नहीं होगी। वक्त के जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डालना आज भी मुमकिन नहीं होता। आज हम वक्त के रिवाज, दुनिया के कवानीन, उस पर चलने पर मजबूर हैं। तो जब हक दिल में आता है ना, तो बातिल जगह नहीं लेता। और अल्लाह ताला कहते हैं वो रबत नाला कुलूबिहिम इस काम, और हमने उनके दिलों को बांध। रबत ऐसे होता है, रबता रबता नहीं है, बंदे का अल्लाह से रबता होता है। कहते हैं कि अल्लाह ताला बंदे के ऊपर कोई गम डालने से पहले एक पत्थर की एक सिल रख देता है, इसको दिल का रिबात कहते हैं। उम्मे मूसा का दिल अल्लाह ने बांधा था। अल्लाह कहते हैं अगर हम उसका दिल ना बांधते तो वो तो उड़ जाती, उसका दिल तो खाली हो चुका था हर गम से, सिर्फ मूसा 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 ही हो रहा था उसके दिल की धड़कनों में। लेकिन वो रबत ना ला खुलूबी में, और आज भी जो जितनी सच्चाई के साथ अल्लाह के दीन का काम करता है ना, उतना रबातुल कुलूब होता है। रबत ना ला खुलूबी है इस काम, शर्त एक है, पहली क्या थी आमनो, दूसरी कामो। आज अपनी उंगलियों पर लिखिए करने के काम आमनो, ईमान के पौधे को पानी दें, ईमान बढ़ाइए। और ईमान कैसे बढ़ेगा, सीधी सी बात है, अल्लाह के बारे में जान के बढ़ेगा, अल्लाह के नामों पे गौर व फिक्र से बढ़ेगा, अल्लाह के इस कलाम को सुन के बढ़ेगा। नमाजों से ईमान बढ़ता है, रोज़ों से ईमान बढ़ता है, यानी हर वो काम कीजिए जिससे ईमान बढ़े। इसमें मुझे अपना पुराना लेक्चर याद आ रहा है, फ्रूट्स ऑफ ईमान, मैंने अमेरिका की शायद हर स्टेट में वो लेक्चर दिया हुआ है, फ्रूट्स ऑफ ईमान और कभी स्वीट्स ऑफ ईमान के नाम पे, पुरानी वेबसाइट पे हमारे कई लेक्चर थे। उसमें मैं 90% एक आयत लेती थी, अलम तरकैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तैयबा, सूरत इब्राहिम में अल्लाह ने जो मोमिन की मिसाल एक दरख्त से दी है। सुनिए, मेरे लिए 20 से ज़्यादा तरीके बताए थे ईमान को बढ़ाने के, फ्रूट्स ऑफ ईमान बताए थे। बच्चों के ईमान पे काम करें, अगर आप खुद यंग हैं, बच्चियां हैं, 20 के अंडर हैं, उसके अराउंड है, अपने ईमान को बचाइए। ईमान बच गया तो इज्जत भी बच जाएगी, ईमान बच गया तो आपका वक्त भी बच जाएगा और बहुत कुछ। और दूसरी चीज़ इस काम हो, इस्तकामत, पीयर प्रेशर में नहीं आना, चलो तुम उधर जिधर की हवा, नहीं करना जो सब करें हमने नहीं करना, जो रस्म व रिवाज दूसरे करें हमने नहीं करने, जो गलत रस्में दूसरों की हमने नहीं करनी, अपने असूलों पे चलिए। दूसरा बंदा 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाए तो क्या आप भी 200 के पे शुरू कर देंगे? नहीं, आप देखिए इस रोड पे गाड़ी चलाने की लिमिट क्या है, मैंने उसमें रहना है। क्योंकि जवानी में आरजुएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशें बड़ी होती हैं और एनर्जी बहुत होती है, तो फिर बंदे को कोई कह देना जाके दीवार को टक्कर मारा हो तो वो मारेगा, ये नहीं करना। इस काम, और दुआ क्या थी, फ़क़ालू, फिर उन्होंने कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दी लन नदुअ मिन दूनिही इलाहन। तीसरा काम, अल्लाह कहते जब हमने उनके दिल मजबूत कर दिए, जब वो उठे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया क्या कि हमारा रब बस वही है, ये है तीसरा काम। रब्बुन अल्लाह कह दिया, उसके बाद इधर उधर नहीं होना। रब्बुस समावाति वल अर्दी लन नदुअ मिन दूनिही इलाहन, ये काम कीजिए कि हम अल्लाह के सिवा किसी का कोई इलाह नहीं बनाएंगे। डॉलर की पूजा नहीं, पेट की पूजा नहीं, माल की पूजा नहीं, हमारी वर्शिप सिर्फ अल्लाह के लिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और अगर खुदा न खास्ता कभी हमने ऐसा किया لقد قلنا اذن شتتا. آپ سورہ کا کھول لیجئے، اس میں یہ آپ کو ساری آیتیں مل جائیں گی. تفسیر سن لیجئے اس کی، الحمدللہ ڈیٹیلڈ بھی ہے، ہر طرح کی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا، شرک کیا، اللہ کی بات کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو مانا، تو ہم نے بیجا بیتکی بات کی جس کا ہمیں حق نہیں ہے. تو وہ جو کردار تھا نا، آج کے نوجوان بچے بچیوں کے لیے بہت اہم ہے. ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے، کیا میری زندگی میں بھی ایسا ہے؟ اگر میں جوان ہوں، اگر اللہ نے مجھے اسلام کی خوبصورت دولت دی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کیوں رونا روتے ہیں، پازیٹو بنیے. میں نے ایک چیز سنی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے اس شہر فورٹ عباس میں بھی یہ بیماری پہنچی ہے کہ نہیں، ادھر بھی کسی کو ڈپریشن ہے، اس شہر میں بھی کوئی سٹریسڈ آؤٹ ہے، انگزائٹی، خودکشیاں کسی نے کی کبھی؟ یعنی اس وقت ہمارے پڑھے لکھے بچے کالجوں، یونیورسٹیز، اور خاص طور پہ پھر ان کے ہاسٹلز میں رہنے والے ڈپریشن کا شکار ہے، خودکشی کر رہے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو لاسٹ ویک گزرا ہے نا، ادھر ادھر چلتے پھرتے گھروں میں میں نے دیکھا ہے نوجوان بستروں پہ سارا سارا دن سوتے ہیں اور رات ساری جاگتے ہیں، اور رات کو جاگنے میں نائٹ ڈیلز آتی ہیں، کبھی پیزا آتا ہے تو کبھی کھانے آتے ہیں. ظاہر ہے رات کو جاگیں گے تو ماں نے تو نہیں رات 3 بجے اٹھ کر آپ کو پروٹھے بنا کے دینے، پھر وہ ہیں باہر بڑی مائیں، مڈ نائٹ ڈیلز ہوتی بھی سستی ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزوں میں آتے ہیں. اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں. میرا دل واقعی روتا ہے، میں بالکل کوئی مبالغہ نہیں کرتی، لیکن وہ علامہ اقبال جو آج سے کتنے سال پیچھے جائیں اگر، تو یورپ میں گئے تھے، تو وہاں جا کر انہوں نے ایک قسم کا مرثیہ پڑھا تھا کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تناسانی، اور اسی میں ایک شعر ہے کہ ہوتا ہے دل میرا سی پارا. سی کہتے ہیں 30 کو، 30، یہ جب کہتے ہیں نا پہلا سپارا، دوسرا سپارا، تھی یہ سپارا نہیں ہے لفظ، سی پارا، یعنی قرآن کے 30 حصوں میں سے ایک حصہ. اپنی جوان اولادوں کو ضائع نہ کریں، آپ کے بچے قیمتی ہیں، یہ فیوچر آف اسلام ہے. مجھے بتائیے تو صحیح کہ ہم اس وقت جو بچے پال رہے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے یوتھ دا فیوچر آف اسلام، کیا اسلام کا فیوچر ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ایک اسلام کا نمائندہ سمجھ کر پال رہے ہیں؟ کتنے فتنے ہیں آپ کو تو، مجھے پتہ نہیں ایسے بار بار لگ رہا ہے مجھے یہ باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے. آپ تو بڑے پروٹیکٹڈ ماحول میں، بڑے کمپیکٹ سے ماحول میں پلنے والے ایک اس شہر میں محفوظ لوگ ہیں. یہ بات میں کہیں باہر پلیٹ فارم پہ کرتی، یورپ میں کرتی، امریکہ کینیڈا میں کرتی، مجھے کہنے کا حق تھا. مجھے بار بار ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تو ماشاء اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونے، لیکن میں قیاس کر سکتی ہوں کہ سوشل میڈیا، نیٹ، کمپیوٹرز نے یہاں رہ کر بھی ہمیں باہر کی دنیا سے متعارف کرایا ہے. ایسے ہی یہاں بھی کوئی باہر کے فتنے پہنچے ہوئے ہیں؟ کوئی آج دنیا میں جن موضوعات پہ باتیں ہو رہی ہیں ادھر بھی پتا؟ کچھ نام سنے آپ نے؟ قوم لوطیت کا فیل ہے ادھر؟ اللہ کرے گا کہ نہ ہو، لیکن ہے، آپ کی باتوں سے لگ رہا کہ ہے. آپ نے یوتھ، جو ینگ یوتھ میری بات کے سننے والوں میں اگر ینگ ہے، آپ نے چینج لانا ہے. اور اگر آپ ماں ہیں اور آپ کے جوان بچے ہیں، اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ یہ گندگیاں، یہ برائیاں، ان کو آپ نے دور کرنا ہے. اصحاب کہف آپ کو یہ پیغام دے کر گئے تھے کہ برائی کو قبول نہیں کرنا، کیا کریں پھر سب کر رہے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ نیکی تھی ان کی کہ ہم غلط چیز کو یس نہیں کہیں گے. ریئیکشن لیا، اٹھ کے نکل گئے، ایک گیا، دوسرا گیا، مقصد ایک تھا تو دور دور سے آئے ہوئے وہ 8-9 لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا. ان کے لیے وہ چھوٹی سی غار کو ایک انکیوبیٹر بنا کے ان کے جسم کو بیڈ سول ہونے سے روک لیا. اللہ پوری کائنات کو آپ کا معاون بنا دیتا ہے. ایک دفعہ سچے دل سے نکلیں تو صحیح. جب سے سوشل میڈیا عام ہوا، نمبر ہر ایک کے پاس ہوتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، میرا نہیں خیال کہ ہر دن کوئی ایک نہ ہو، مبالغہ نہیں کرتی، ایک ہفتے میں 3-4 میسیجز مجھے آتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا میں کون ہوں. اور میسیج کیا آتا ہے؟ میں ایک آن لائن ٹیچر ہوں، قرآن کی ماہر، تجوید کی ماہر، اس کی ماہر، اس کی ماہر، یہ وہ، مجھ سے بچے پڑھوائیں. کئی دفعہ مالی تعاون کے لیے لوگ پوچھتے ہیں، میرا تو نہیں دل مانتا. سورج نے کبھی ایڈورٹائز کیا اپنے آپ کو؟ خدا کے لیے مجھ سے روشنی لے لو، خدا کے لیے مجھ سے دھوپ لے لو. وما ينفع الناس فیم کس، آپ کے اندر خیر ہے نا تو آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، اللہ وہاں بھی لوگوں کو آپ کی خبر دے دے گا، اور ان کے چلنے سے وہ کہتے ہیں کہ رستے خود بن جائیں گے اور وہ سارا گھاس پھوس ختم ہو جائے گا، آپ کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں. انفارم کرنا اور چیز ہے، لیکن یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں نا کبھی کبھی دین کے نام پہ، ہم दूसरे के सहारे पे ज़रा अपने नाम को मशहूर कर लें। ये सिर्फ नकली प्रोडक्ट्स को बेचने का, कहते हैं ना नक्कालों से होशियार रहे। एक और जुमला बड़ा आता था वो, बल्कि नकली चीज़ों पे ये लिखा होता था, मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। पर वो होती भी जाली थी, असली चीज़ों ने कभी नहीं ये लिखा होता। हु केयर्स, आज भी ब्रांडेड चीज़ें, उनको ज़रूरत ही नहीं कोई एडवर्टाइज करने की। तो जब आप वाकई महसूस करेंगे ना कि मुझे कुछ करना है, चलें छोड़ें दुनिया को, आप इस शहर से शुरू करें। मैंने इस शहर को साफ करना है, तत्खीर, सफाई, सुथराई, ज़ाहरी भी, बातनी भी, कल्बी भी, रूहानी भी, दिल भी साफ, कीना भी ना हो, बुगस भी ना हो, हसद भी ना हो, सड़कें भी साफ, गलियां भी साफ। चलें सारे मिलकर धो देते हैं यहाँ, जैसे आप कितने लोग बैठे हैं इस वक्त, निकलें यहाँ से, इस मस्जिद से शुरू करके अपने अपने घरों तक के रस्तों को हम साफ करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। नहीं, हम सारा शहर साफ कर सकते, अपनी गली तो साफ कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं ना, अपनी मदद आपके तहत। क्या हम अपने दिमाग की सफाइयों, दिल की सफाइयों से लेकर गली मोहल्लों की सफाइयाँ नहीं कर सकते? एक एक दरख्त धोने का पानी नहीं है हमारे पास। इतनी मिट्टी दरख्तों पर पड़ी हो और हम रोज़ उत्तर से गुजरें, हमें कुछ ना हो। और कूड़े वाले ढेर के पास पकौड़े बना के बेच रहे हैं और लोग ले लेके खा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि ना ही अल्लाह समझ दे तो अच्छा। समझ वाले बंदे का जीना बड़ा ही नसमझी है। वक्त की गलत चीज़ों को नहीं मानना या साबे का हक कह गए।